आप SBS उर्दू के साथ हैं। इस तरह की और कहानियाँ sbs.com.au/urdu पर सुनिए।
सबसे पहले शह सुर्खियां। विक्टोरिया में कोरोना वायरस का एक नया केस। वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने चीन से ताल्लुकात में बेहतरी का आदा किया है। और अब खबरें तफसील के साथ। चीन के बेल्ट एंड रोड इकदाम के जवाब में G7 अक्वाम के सरबराहान ने गरीब ममालिक के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और तरक्की के लिए आला इकदार पर मबनी शराकत दारी का मनसूबा पेश किया है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक खत्ते में मुस्तहकम और पुरअमन इकदामात की हिमायत करता है।
ऑस्ट्रेलिया हैज़ बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम चाइनाज़ इकोनॉमिक सक्सेस। चाइना हैज़ बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम ऑस्ट्रेलियाज़ ट्रेड विद देम। And of course, we want to see that continue. We have a comprehensive strategic partnership with China. And partnerships are about managing issues that occur within the relationship. We, of course, would like to see the dialogue that was occurring to continue again and start again. But that's very much an issue for China.
उधर G7 ममालिक के इजलास से हटकर वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात की है। ये दोनों सरबराहान की पहली मुलाकात है। 40 मिनट के दौरानिए पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के दौरान बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी मुलाकात में हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन का इस सिलसिले में कहना था कि ये दुनिया के मामलात पर यकसां ख्यालात रखने वाले दोस्तों का इजलास था। उधर विक्टोरियन सेहत के हुक्काम रियासत में आने वाले वाहिद कोरोना वायरस केस की तहकीकात में मसरूफ़ हैं। वज़ीर सेहत मार्टिन फोले का कहना है कि मस्कूरा केस एक पिछले केस से मुतालिक है और अपना करंटीना का वक्त गुजार चुका था। नए केस का ताल्लुक आर्कियन मेडिसिन के आउटब्रेक से है। ताहम जनाब फोले के मुताबिक सामने आने वाला केस एज केयर का रिहायशी नहीं है। दूसरी जानब विक्टोरिया के कायम मकाम प्रीमियर का कहना है कि रवां हफ्ते के आखिर तक विक्टोरिया में आयद पाबंदियों में मजीद नरमी का इम्कान है। G7 इजलास के दूसरे दिन वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने COVID-19 के असल माखज़ पर तहकीक के लिए जोर दिया है। जनाब मॉरिसन का कहना था कि मजीद तहकीक मुस्तकबिल में किसी दूसरी आलमी वबा से बचाव का जरिया बन सकती है और तहकीक का मकसद वबा को समझना है, किसी पर इल्ज़ाम आयद करना नहीं है। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल ट्रोडस ग्रेसिस ने भी वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन के ख्यालात की हिमायत करते हुए कहा है कि चीन की जानिब से मजीद शफाफियत की ज़रूरत है। और अब कुछ खबरें आलमी उफक से। बरतानिया में जारी G7 ममालिक के इजलास के दौरान एहतजाज जारी है। अगरचे इजलास के एजेंडे में क्लाइमेट चेंज अहम तरीन तरजीह है, लेकिन एक्टिविस्ट का कहना है कि सियासतदान महज वादे कर रहे हैं। रिचर्ड एक्लिस्टोन जो मुजाहिरों में शामिल हैं कहते हैं कि बहुत ज्यादा इकदामात की जरूरत है।
Our theme for today is the fact that G is for greenwash. So what we're saying is that we understand what the government and big business are doing. They are basically painting a story like they're doing what needs to be done for the climate and ecological emergency. But we know that they're not. So we're just bringing that to their attention, that we're watching them and we know what they're up to.
उधर सऊदी अरब ने कोरोना वायरस फैलने के तनाजुर में हाजियों की तादाद में कटौती का ऐलान कर दिया है। आलमी वबा के तनाजुर में सऊदी अरब ने हाजियों की तादाद 60,000 तक महदूद रखने का फैसला किया है। साथ ही सिर्फ 18 से 65 साल की उम्र के वो अफराद हज कर सकेंगे जिनकी वैक्सीन मुकम्मल हो गई है, जबकि सिर्फ उन लोगों को हज करने की इजाज़त है जो सऊदी अरब में ही रिहाइश पजीर हैं। सऊदी हुकाम का कहना है कि फैसला हाजियों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। याद रहे कि आम हालात में 2 मिलियन से ज़ायद अफराद हज के इस सालाना इज्तम में शरीक होते हैं। गुज़िश्ता रोज़ बम धमाकों के नतीजे में अफगान दारुल हुकूमत काबुल में 7 अफराद हलाक, जबकि कम से कम 5 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक काबुल की तहसील 13 के इलाके दश्त आर्ची और तहसील 6 में 30 मिनट के वक्फे से 2 बम धमाके हुए। हुकाम के मुताबिक पहले धमाके में 1 शहरी हलाक और 4 जख्मी, जबकि तहसील 6 में होने वाले धमाके में 1 खातून समेत 6 अफराद हलाक जबकि 1 जख्मी हुआ है। धमाके की जिम्मेदारी किसी ग्रोह ने कबूल नहीं की है। और अब कुछ खबरें पाकिस्तान से। حالیہ حکومت نے اپنے دور حکومت کا تیسرا بجٹ پیش کر دیا ہے. اس سال حکومت نے فون کالز، ایس ایم ایس، انٹرنیٹ پر ٹیکس نہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم کابینہ نے فی الحال ان تجاویز کی منظوری نہیں دی ہے. وزیر خزانہ شوکت ترین نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت کے پاس فسکل اسپیس نہیں ہوتی، وسائل بینکوں کے پاس ہیں. ادھر پاکستان میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. وزیر صحت سندھ نے کرونا ویکسینیشن کے عمل میں تیزی لانے کی ہدایت دی ہے. وزیر صحت سندھ کے مطابق کرونا وائرس کی بھارتی قسم کے پیش نظر ویکسین کا دائرہ کار بڑھانے کی ہدایت دی گئی ہے، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ صنعت لاک ڈاؤن سے بچنے کے لیے ورکرز کی ویکسینیشن کروائیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صرف ان فیکٹریوں کو کھولنے کی اجازت دی جائے گی جن کے ملازمین کی ویکسینیشن ہو چکی ہوگی. اور اب کچھ خبریں کھیل کے میدان سے. ادھر یورو کپ میں دوران میچ ڈنمارک کے کھلاڑی کرسٹین ایرکسن کو گراؤنڈ میں گرنے کے بعد دل کا دورہ پڑا، جس کے بعد انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. یو ایف اے کے مطابق فٹ بالر میچ کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے گرے، تاہم اب ان کی حالت بہتر ہے. واقعے کے بعد ڈنمارک اور فن لینڈ کے مابین جاری فٹ بال میچ معطل کر دیا گیا. اور اب موسم کی صورتحال، جہاں اگر آسٹریلیا کی بات کریں تو کل بروز پیر مختلف شہروں میں موسم کچھ یوں رہے گا. سڈنی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17 اور کم سے کم 8، میلبرن 15 اور 7، کینبرا 12 اور 1، برسبن 22 اور 8، ایڈیلیڈ 19 اور 10، پرتھ 17 اور 9، ڈارون 31 اور 20، ہوبرٹ 12 اور 8. جبکہ اگر پاکستان کی بات کریں تو دارالحکومت اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 اور کم سے کم 23، کراچی 33 اور 29، لاہور 35 اور 26، پشاور 39 اور 26، کوئٹہ 37 اور 22، جبکہ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 اور کم سے کم 26 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے.